अब संयम मार्गणा का कथन शुरू होता है। मंगलाचरण से स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस परोवणम बोच्छम। द्वादशांग मयी सरस्वती माता को नमन करके साक्षात सरस्वती की प्रतिकृति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में बैठकर उन्हें वंदामी करते हुए आप सबके लिए विषय की प्रस्तुति है। आ जाएंगे सीधे 127 नंबर की गाथा। पुस्तक के अंदर पेज नंबर 118। संयम मार्गणा का समापन करते हुए कहते हैं कि संयम मार्गणा में जीवों की संख्या कितनी है। ये बहुत अच्छा रुचिकर विषय है। आपको जानना है कि संयमी मुनिराज कितनी संख्या में होते हैं।
पमदादि चौन्न जुदी
सामाय दुगम कमेण से सतियम
सामाय दुगम कमेण से सतियम
सत्सहस्राणवसय
नवलखातीहि परीणा।
सामूहिक गाथा पढ़िए।
पमदादि चौन्न जुदी सामाय दुगम कमेण से सतियम सत्सहस्राणवसय नवलखातीहि परीणा।
प्रमत्तादि चतुर्णाम युति सामायिक द्विकम क्रमेण शेष त्रिकम सप्त सहस्राणि नवशतानि नवलक्षाणि त्रिभि परिहीनानि। यानी छठे गुणस्थान से लेकर और चौदहवें गुणस्थान तक जो संयमी जीव हैं उनकी संख्या बताई गई है। संपूर्ण संख्या जो 3.9 करोड़ मुनियों की पढ़ते हैं तो उनका उनके बारे में ये जानना कि वे छठे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक संयमी होते हैं। भले ही वे भगवान बन जाते हैं लेकिन संयमी की संख्या में आते हैं। और सबसे छोटे संयमी छठे गुणस्थान से शुरू होते हैं और सबसे बड़े संयमी यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले भगवान चौदहवें गुणस्थान में होते हैं। तो उसमें बताया प्रमत्त आदि 4 गुणस्थान वर्ती जीवों का जितना प्रमाण है उतने सामायिक संयमी होते हैं। पमदादि चौन्न जुदी 4 गुणस्थान, 4 कौन से? प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 4 गुणस्थान वर्ती जितने साधु हैं, संयमी हैं, वे सब सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र को संयम को धारण करने वाले संयमी कहलाते हैं। और उसके बाद परिहार विशुद्धि संयम वाले 3.7 हजार यानी 6,997 की उनकी संख्या है। सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले 3.9 यानी 897 की उनकी संख्या है। यथाख्यात संयम वाले 3.9 लाख 3.9 लाख होते हैं। इस प्रकार से सबका जब जोड़ करते हैं तो 3.9 करोड़ की संख्या आ जाती है। यानी कि 8,99,997। इस प्रकार से ये संख्या आती है। तो संयम मार्गणा में संयमियों के लिए जो ये बताया है तो इन चीजों को जान करके आज हमें ये पता लग जाता है। अब आप देखिए कि इसकी और डिटेल की है। प्रमत्त गुणस्थान वर्ती जीव माने छठे गुणस्थान वर्ती मुनियों की संख्या है 5,93,98,206 है। आप पेज नंबर 120 खोल लीजिए जो मार्गणाओं का सार अलग अलग प्रत्येक प्ररूपणा के अंत में पूज्य माताई ने सार निकाल करके दिया है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रखा है गोमठ सार जीव कांड सार। माने बड़े गोमठ सार की 750 लगभग गाथाओं में से विद्यार्थियों के समान अल्प बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए, जीवकांड की बात को समझाने के लिए इसमें थोड़ी सी गाथाएं, केवल 173 गाथाएं ली गई हैं, और उसमें प्रत्येक प्ररूपणा के अंत में सार को दे करके उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बना लिया है। आप चाहे जितने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लें, लेकिन इस गोमट सार जीवकांड सार की थोड़ी सी गाथाओं को पढ़कर भी आप पूरे ग्रंथ का सार समझ जाएंगे। तो इसमें क्या कहा कि जो 3.9 करोड़ मुनराजों की संख्या है उसमें छठे गुण स्थान से सबकी अलग अलग संख्या दी। कैसे मालूम पड़ी ये संख्या? केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान के द्वारा। जो भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर इस युग के हुए, उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर गौतम गणधर स्वामी ने उन सब की जो डिटेल किया, और उसके पश्चातवर्ती आचार्यों ने हमें जो लिखा, लिख करके दिया, उसके अनुसार हम ये सब जानते हैं और एक गाथा के माध्यम से पढ़ते भी हैं। गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्विपद द्वितय वर्तिना वंदामहे त्रिसंख्योन नव कोटि मुनीश्वरान। यानी गुरु भक्ति के साथ में 2.5 द्वीप के अंदर जितने मुनिराज हैं वो सब 3.9 करोड़ की संख्या वाले हैं, उन सबको एक श्लोक के माध्यम से नमन कर लिया, तो सभी संतों को, सभी संयमियों को नमन हो जाता है। तो छठे गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत संतों की संख्या है 5,93,98,002,006, और सातवें गुण स्थान वर्ती अप्रमत्त संयतों की संख्या है 2,96,99,103, और उपसम श्रेणी चढ़ने वाले 4 गुण स्थान कौन से हैं? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। इन 4 गुण स्थान वर्ती जीवों को उपसम श्रेणी वाले संत संयम कहते हैं। तो इनकी संख्या है 1,196, सब बहुत कम संख्या है। और छपक श्रेणी माने 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान वर्ती ये छपक श्रेणी चढ़ने वाले संयमी कहलाते हैं। इनकी संख्या है 2,392। उसके बाद 13वें गुण स्थान वर्ती जो सहयोग केवली गुण स्थान वर्ती हैं, जिनका समोसरण रस्ता है, अरहंत अवस्था को प्राप्त है, ऐसे सहयोगी जिन जो हैं 8,98,502 इनकी संख्या है। और अयोगी जिन माने 14वें गुण स्थान वर्ती, जिनका समय बहुत ही एक समय आ ई ऊ री ली, केवल इतना शब्द बोलने जितना समय है और बस वो कर्मों को काट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसे अयोगियों की संख्या है केवल 598। यानी ये अधिकतम संख्या बताई है, इनका पूरा जोड़ किया गया तो 8,99,99,997 माने 3.9 करोड़ इन संयमियों की संख्या है। ये संयम मारना का सार जानते हुए अंत में 3.9 करोड़ संयमियों को नमस्कार करते हुए अपने कर्मों को निर्जीर्ण करना है, संयम की भावना बहाना है, असंयम से दूर रहना है, इस प्रकार से। और अंत में जानना ये है कि आज पंचम काल चल रहा है, आज भी प्रातः काल पूज्य माताजी ने अपने प्रवचन में कहा कि पंचम काल में अत्यंत हीन संगनन है, लेकिन तपस्या उत्कृष्ट संगनन वाली ही है। इसलिए हम लोगों को छूट दी गई, जैसे बाजार में सेल लगती है तो बहुत सारे लोग उस छूट में चीजें खरीदने के लिए चले जाते हैं, चाहे किसी होटल की दुकान हो, चाहे कहीं पर वो सेल लगती है तो वहां पहुंच जाते हैं कि कुछ सस्ता माल मिल रहा है। ऐसे हमारी आज सेल लगी हुई है, इसलिए आज कम से कम 1700 से 1800 दिगंबर जैन साधु साधियों की संख्या हो गई, जबकि सन 1952 में जब गणी ज्ञानमती माता ने घर त्याग किया और संयम के मार्ग पर चली, तो ये बताती हैं कि 60 से 70 साधु केवल उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्राप्त होते थे और किसी को दर्शन करना होता था तो बड़ी मुश्किल से जा करके खोज खोज करके उन संतों के दर्शन होते थे और उनका नियम पूर्ण होता था। लेकिन आज हम सब पुण्यशाली हैं कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने 19वीं 20वीं सदी में दक्षिण भारत के अंदर जन्म लेकर संयमियों की संख्या बढ़ाने में जो अभूतपूर्व योगदान किया है उनके उपकार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी संख्या भी आप समझो कि 3.9 करोड़ मुनीश्वरों के अंदर है। ऐसे ही श्रद्धान करना है कि पंचम काल में मिथ्यात्व से लेकर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती असंयमी तो बहुत सारे हैं। असंयमी तो हैं ही, देश संयमी भी हैं, उसमें तमाम गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं अणु व्रतों को धारण करते हैं, प्रतिमा के व्रतों को धारण करते हैं, तो संयमी यानी देश संयमी पंचम गुण स्थान वर्ती कहे जाते हैं। और उसके बाद छठे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक यानी आज के मुनियों को छठा सातवां गुण स्थान ही होता है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो संयम का पालन करने वाले आज भी मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं और पंचम काल के अंत तक होते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। चतुर्थ काल में भी द्रव्यलिंगी होते थे और पंचम काल में भी भावलिंगी संत हैं, लेकिन ये हम कोई भी नहीं जान सकते कि कौन भावलिंगी है कौन द्रव्यलिंगी है। किसी को अपने आप सर्टिफिकेट लेने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य जो सीमंदर स्वामी के समोसरण में भी गए और वहां से आकर उन्होंने 84 पाउड़ ग्रंथों को लिख करके हमें दिया, उनने भी अपने आप नहीं कहा कि मैं भावलिंगी मुनि हूं, जबकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी को पंचम काल का केवली सर्वज्ञ भगवान के समान कहा गया है। तो भव्यात्माओं, हम सब विद्यार्थी की तरह से संयम का अभ्यास कर रहे हैं। ये जो संख्या कही है यह मुनियों की संख्या है, यह आरिकाओं की संख्या नहीं है। आरिकाएं उपचार महावृत्ति होती हैं, उपचार से संयमी होती हैं, संयतिका संयमिनी, इन शब्दों से मूलाचार पद्म पुराण आदि ग्रंथों में आरिकाओं के लिए कहा गया है। और सर्वत्र समोसरण के अंदर जितनी मुनियों की संख्या होती है उससे 3 गुनी संख्या आरिकाओं की, 2 गुनी या 3 गुनी आरिकाओं की भी संख्या होती है। इसलिए जहां जहां जिन ग्रंथों में स्त्रियों की निंदा की गई वहां पर बराबर कहा गया कि भगवान की माताएं आरिका माताएं ये जो हैं उन साधारण स्त्रियों में नहीं आती हैं। इसलिए आप सबको जानना है पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका माने श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संग इनका अस्तित्व विद्यमान रहेगा और उनके अंदर ही अवधिक ज्ञान जागृत होगा और तब जाकर के वे धर्म का ह्रास होगा इस बात को समझते हैं और संलेखनादि धारण करते हैं। तो आज भी हैं सच्चे साधु और आगे तक पंचम काल के अंत तक होते रहेंगे, ये मान करके उनको नमस्कार करना भक्ति करना आहार दान आदि देना ये सब करके अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष इनके किसी के चारित्र मोहनी कर्म के उद्देश्य से किसी प्रकार की भ्रष्टता आ गई है, कोई चारित्र से च्युत हो रहे हैं, आपने किसी को प्रत्यक्ष में देख लिया है तो आप उनसे थोड़ा सा विरक्त हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई मुनि मार्ग संयमियों का मार्ग कभी भी बाधित नहीं होगा। अगर कभी कोई पलंग पर मरता है तो पलंग पर सोना छोड़ नहीं दिया जाता है ना। ऐसे ही संयमियों के अंदर अगर किसी के अंदर दोष लग गया तो भव्यात्माओं उनके गुरु जिम्मेदार हैं, आप उनको संबोधन दीजिए लेकिन कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना या उनको लेकर के सारे संतों को कभी भी बदनाम नहीं करना। सब संतों के प्रति जिसके हाथ में पिच्छी का मंडल देखें यह मुद्रा है और उस मुद्रा को हमेशा नमस्कार करके अपने मस्तक को नत करना चाहिए। और स्वयं जो आवृत्ति या संयमी है तो असंयम से आगे बढ़ करके अणुव्रत आदि धारण करके देश संयमी बने। शक्ति है तो सकल संयम को धारण करें। आज आप देखो जगह जगह युवा संत बन रहे हैं, युवा अवस्था में आरिकाएं बन रही हैं और अनेक गृहस्थ लोग संतों के साथ जुड़ करके श्रावक और श्राविकाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ये मैंने आप लोगों को संयम मार्गणा का समापन करते हुए बताया कि अपनी शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति से अधिक करना नहीं। गुरु कहे वो करना, गुरु करे वो नहीं करना। ये हमारे आचार्य गुरु नाम गुरु जो ज्ञानमती माता के गुरु थे वे हमेशा कहते थे, माता जी बताती हैं कि गुरु जो कहे वो करना, गुरु जो करे वो नहीं करना। गुरु ने 5 उपवास कर लिया और चेला भी बस वैसे ही करने लग जाए तो क्या होगा? नहीं, शक्ति नहीं है, आप गिर पड़ेंगे और चारित्र से पतित होने का भी चांस आ जाएगा। आपकी शक्ति को देख करके गुरु वैसा नियम देते हैं, उसी प्रकार से पालन करके आपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना। अब मैं आपको थोड़ा सा कषाय मार्गणा और ज्ञान मार्गणा का रिवीजन करा दूं। वेद मार्गणा तक आपका पेपर हो चुका है। कषाय मार्गणा के अंदर आपने जाना कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाएं हैं और उनके शक्ति की अपेक्षा भी भेद इसके अंदर बताए और उसके बाद में कषाय रहित जीवों का वर्णन किया और सार में ये बताया कि चाहे क्रोध करें, चाहे मान करें, चाहे माया करें या लोभ करें, लेकिन अपनी कषाय को मंद रखें। तीव्र कषाय वाला कमठ के समान भाव भाव में हमेशा अनंतानुबंधी कषाय को करके अपने भाव भावांतर को बढ़ा लेते हैं। इसलिए कषाय को जितना कम किया जाएगा, लोभ, क्रोध, मान, माया सब चीजें कम कम करके और अपने संसार को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए इसमें क्रोध, मान, माया और लोभ चारों की शक्ति की अपेक्षा बताया कि कोई पत्थर की रेखा के समान है तो कोई धरती पर खींची गई रेखा के समान है, कोई धूली रेखा के समान है तो कोई जल की रेखा के समान है। तो जल की रेखा के समान तो क्रोध को संत जन करते हैं कि तुरंत क्रोध आया और तुरंत समाप्त हो गया। अब श्रावक लोग भी उनके अंदर तो कषाय रहती है, लेकिन कोशिश करें कि हम 1-2 दिन में, नहीं तो 15 दिन के अंदर कषाय को खत्म करें और ज्यादा से ज्यादा है तो 6 महीने के बाद कभी भी कोई कषाय नहीं रखना। इसीलिए अपने यहाँ 3 बार 16 कारण और 10 लक्षण के पर्व आते हैं। क्या आप 4-4, 3-3, 4-4 महीने के बाद में क्षमामणि करके और अपने अंदर मिच्छा में दुक्कड़म की भावना से कषायों को कम कर दें। ये कषाय मार्गणा का सार है। और उसके बाद ज्ञान मार्गणाई, ज्ञान का विषय तो अच्छा ही लगता है, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। हम देखते हैं आज ज्ञानमती माता के ज्ञान की प्रशंसा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के वाक्य की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानमती माता ने कह दिया तो आज कितने समाज के लोग, कितने विद्वान लोग, कितने संत लोग कहते हैं कि ज्ञानमती माता की वाणी मतलब जिनवाणी, और उस जिनवाणी का वो लोग सब लोग श्रद्धान करते हैं, विश्वास करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ज्ञान का सतत अभ्यास किया है। तो ज्ञान मार्गणा में अज्ञान को भी बताया, कुमति, कुशुत, कुअवधि ज्ञान भी है। तो अपने को अज्ञान की ओर नहीं जाना है, चाहे छोटा सा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान है तो हमें संसार से तिरा देगा। तो सम्यक ज्ञान 5 है, मति, शुद्ध, अवधि, मनापरि और केवल ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान 3 है, कुमति, कुशुत और कु अवधि। तो सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से 8 ज्ञान है। इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और फिर परीक्षा में आए तो आप बड़े फ्रेंकली उसको लिखना, क्योंकि इतने दिन जो पढ़ाया गया है उसका फल आप कल होने वाला है। शुद्ध ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि एक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेते हैं, उनके अंदर भी उत्पन्न होने के जन्म लेने के प्रथम समय में सर्वजघन्य ज्ञान होता है, इस ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। इससे छोटा कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन इतने के बिना कोई जीव नहीं होता। अगर इतना भी ज्ञान नहीं होगा तो जीव नाम से नहीं कहा जाएगा, वह अचेतन बन जाएगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर 12 अंगों के अक्षर वगैरह पद सब बताए हैं, अंग बाई के अक्षर बताए हैं, अंग बाई और अंग प्रविष्ट ज्ञान के भेदों को बताया है, अवधिक ज्ञान के स्वामी बताया है कि किस प्रकार भव प्रत्यय गुण प्रत्यय नाम के अवधिक ज्ञान है, नारकियों में कौन सा ज्ञान होता है, देवताओं के कौन सा ज्ञान होता है, ये सब आपने जाना है। मनापर्य ज्ञान मुनियों को ही होता है और केवल ज्ञान तो केवली भगवंतों को होता ही है। और संयम मार्गना के अंदर सबसे पहले 5 प्रकार का संयम बताया आचार्य देव ने, 5 पापों को छोड़कर 5 महाव्रतों का पालन धारण करना उन्हें, और 5 समितियों का पालन करना, 4 कसायों का निग्रह करना, मन वचन काय का त्याग, उसके काय रूप दंड का यानी उसकी अशुभ अवस्था का त्याग करना, और 5 इंद्रियों को जय करना। इस प्रकार 5 प्रकार का ये संयम है, और 7 प्रकार का संयम जो पढ़ी रखा आपने, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, देश संयम और असंयम। तो इन सब को जानकर असंयम से दूर रहना, देश संयम की ओर बढ़ना, सकल संयम की भावना करना और सकल संयमियों की हमेशा श्रद्धा करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है।